बुद्धि के परे है अनुभव करता, लेकिन अनुभव ठीक उल्टा है। बहुत कुछ रुचिकर बातें हैं जो बुद्धि के अंदर आती है, बुद्धि के क्षेत्र में आती है, और इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चलने वाला है, क्योंकि अनुभव बहुत विस्तृत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। अनुभव करता उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो है जो जान रहा है, तो उसके बारे में आप क्या जानेंगे। लेकिन अनुभव के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है, लेकिन आखिर में आप देखेंगे कि ये भी काफ़ी रहस्यमय चीज़ है। ये भाग जो है अस्तित्व का दूसरा चेहरा, जो कि अनुभव है, काफ़ी रहस्यमय है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत भी बहुत है। तो शुरुआत करते हैं। जो भी आपके सामने है इस वक्त, वो अनुभव है और वो अस्तित्व भी है। जैसा कि हमने जाना, दोनों अनुभव और अस्तित्व एक ही है। ना कह सकते हैं कि अनुभव अस्तित्व का वो भाग है जो अनुभवकर्ता द्वारा जाना जा रहा है। रोज की भाषा में हम इतना कह सकते हैं, जो भी अनुभव है, इतना कह सकते हैं कि अनुभव है और जाना जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है। हमें तीन तरह के अनुभव हो रहे हैं इस वक्त, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। पहला जो है वो जगत का अनुभव है, वस्तुओं का अनुभव है, और दूसरा शरीर का अनुभव है, और तीसरा मन का अनुभव है। तो बहुत से लोग हैं जिनको पूछा जाए कि अभी क्या हो रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, क्या अनुभव है, तो सबसे पहले वो वस्तुओं की तरफ जाते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था वस्तुओं से संबंधित है, जगत से संबंधित है। जागृत का अर्थ ही है जो जगत से संबंधित हो, वो जागृत, जग जागृत, जागृति, इस तरह से वो शब्द निकला है। तो ये मन की अवस्था है जिसमें वस्तुएं, वस्तुओं का अनुभव होता है। आप देखेंगे मन की अवस्था है, चलती रहती है, नींद में कोई अनुभव नहीं होता वस्तुओं का, कोई अनुभव नहीं होता शरीर का, स्वप्न में कुछ और ही अनुभव होते हैं, और जागृत अवस्था में वस्तुओं के अनुभव होते हैं और शरीर का भी होता है। लेकिन आम आदमी से जब पूछा जाए तो सबसे पहले वो यही कहेगा कि वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं। फिर उसका यदि ध्यान दिलाया जाए कि हाँ तुम भी तो हो, तो हाँ कहेगा, हाँ मैं भी हूँ, लेकिन अपने शरीर की तरफ इशारा करेगा। यानी कि एक आम आदमी जो है, जो आध्यात्म मार्ग पे नहीं है, उसको तो संकेत दे तो वो ये जानता है कि हाँ जगत है, वस्तुएं हैं, और मैं भी हूँ, शरीर के रूप में हूँ जगत में, जगत का ही भाग हूँ, इस तरह से उसका अनुभव होता है। और यदि आप थोड़ा सा और संकेत दें तो उसको पता चलेगा कि हाँ मन भी है, विचार भी है, मन में तरह तरह की अनुभूतियाँ हैं, भावनाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं, एक तरह का मानसिक वातावरण भी है वहाँ पे। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है यदि आप देखें तो, बस इतना ही है अनुभव, वस्तुओं का अनुभव, शरीर का अनुभव और मन का अनुभव। यदि आप कहना चाहें नहीं स्वयं का भी अनुभव है, तो स्वयं का कोई अनुभव नहीं होता। हमने बड़ा विस्तृत रूप में देखा, जो स्व है या जो आत्मन है वो अनुभव करने वाला है, वो एक अनुभव नहीं है। तो कुछ लोग डाल देते हैं इसको अनुभव के वर्ग में, जो कि ठीक है, कभी कभी काम आता है कि कह सकते हैं कि हाँ अनुभवकर्ता का भी एक अनुभव है, जो कि ये ज्ञान है कि मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन ये एक विचार मात्र है मन में। आप देखेंगे इसको गहराई से देखेंगे थोड़ा सा कि अनुभवकर्ता वहाँ पे मौजूद है और उसका ज्ञान एक विचार मात्र है मन में, यानी कि वो मानसिक तरह का अनुभव है। तीन ही तरह के अनुभव आपको मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक तरह का आप होमवर्क कर सकते हैं कि कहीं से भी ढूंढ के एक अनुभव लेके आए जो इन तीन वर्गों में नहीं आता, यानी कि जगत जो वस्तुओं का एक संग्रह मात्र है, जगत और शरीर और मन, इन तीनों के बाहर यदि आप कोई अनुभव ला पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि शायद ही आपको मिलेगा कोई। आप कह सकते हैं कि नींद का अनुभव जो है उसमें ना जगत होता है, ना शरीर होता है, ना मन होता है, तो वो एक अलग अनुभव हो गया, वो उसका एक अलग वर्ग होना चाहिए। तो यदि आप ध्यान से देखें तो नींद भी जो है वो एक मन की अवस्था है, वो एक मानसिक अनुभव है जिसमें कि अनुभव बहुत कम होता है। जब आप उठते हैं तभी आपको आपके मन में विचार आता है कि हाँ मैं सो रहा था, वहाँ पे ना वस्तुएं थी, ना जगत था, ना शरीर था। यही नींद का अनुभव है। नींद में, नींद का यदि अनुभव हो रहा है तो आप नींद में नहीं हैं। ये बात तार्किक है। तर्क के हिसाब से देखें तो यदि आप नींद में हैं, गहरी नींद में जिसमें स्वप्न भी नहीं है, तो यदि आप कहेंगे कि नींद का अनुभव है तो इसका मतलब वो नींद नहीं है, आप जाग रहे हैं इसका मतलब। तो नींद का अनुभव जो है वो मन का अनुभव है, जो कि मन में एक विचार मात्र है, यानी कि मानसिक अनुभव है। और स्वप्न का अनुभव शुद्ध मानसिक अनुभव है, उसमें शरीर भी नहीं होता, जो आपका जागृत शरीर है वो नहीं होता, और जग भी नहीं होता, जगत भी नहीं होता, लेकिन अनुभव होता है। तार्किक बात है, ये आपका स्वयं का अनुभव है कि वहाँ पर एक जगत होता है, वस्तुएं होती है, शरीर होता है, और मैं भी होता हूँ, और अनुभव करता भी होता है, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। इसमें से काफ़ी रहस्यमय जो स्थिति है, जो अवस्था है मन की, वो नींद है, जिसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुषुप्ति मानसिक अनुभव मात्र है, उसका अनुभव मन का अनुभव है और कुछ भी नहीं है। उसमें एक वर्ग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बनाने में क्या जाता है, आप कुछ भी वर्ग बना सकते हैं। तो मानसिक अवस्थाओं को भी आप ऐसा विभाजित कर सकते हैं कि स्वप्नावस्था, नींद अवस्था, नींद की अवस्था और ध्यान की अवस्था, दूसरे जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो अवस्थाएं कर सकते हैं विभाजित। उसका वर्णन काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आज हम सिर्फ सार देखने वाले हैं, मूलभूत तत्व देखने वाले हैं अनुभव के। यदि आप वस्तुओं को देखेंगे तो आपको नाम रूप दिखेंगे। नाम रूप यानी कि एक रूप रहेगा, रंग रहेगा, और एक उसकी और वो चलित रहेंगी, यानी बदलती हुई दिखेंगी आपको वस्तुएं। और इन चीज़ों को मिला के जो चित्त है वो वस्तुओं को गढ़ता है। इंद्रियां काम करना बंद कर दें तो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि वस्तुओं का इंद्रियों से सीधा संबंध है, कुछ निर्भरता है वस्तुओं की इंद्रियों पर। क्योंकि यदि आप एक इंद्री भी निकाल दें तो वस्तुएं बदल जाती हैं। जैसे एक अंधे व्यक्ति के लिए रूप और रंग समाप्त हो जाते हैं, दूसरे जो सिर्फ जो स्वाद है या गंध है या आवाज़ें हैं यही बच रह जाता है उसके लिए। उसका सारा जगत इन्हीं संवेदनाओं का बना होता है, अंधे व्यक्ति के लिए। और इसी तरह से बहरे व्यक्ति के लिए जो है ध्वनियाँ नहीं होती वस्तुओं में, उसका जगत भिन्न होता है। यदि आप दो तीन इंद्रियां भी बंद कर दें तो जगत पूरी तरह से बदल जाता है। और इसी तरह अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी जीवों के लिए, दूसरे जानवरों के लिए जगत पूरी तरह से भिन्न होगा, क्योंकि उनकी इंद्रियाँ भिन्न होती है। इस तरह से ध्यान देंगे तो आपको एक सीधा संबंध दिखाई देगा इंद्रियों का और जगत का और वस्तुओं का। वस्तुओं का जो अनुभव है वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। इंद्रियां नहीं तो वस्तु नहीं, ये एक सीधा संबंध है। आप देखें, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं इस बात पे। उनको लगता है कि वहां पे वस्तुएं हैं और उनका इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहा है। इंद्रियां नहीं है तो वस्तुएं भी नहीं है, उसका सीधा संबंध है दोनों का, निर्भरता है वस्तुओं की इंद्रियों पर। आपको आपकी इंद्रियां नहीं होंगी तो वस्तुओं का कभी ज्ञान नहीं होगा, जगत का ज्ञान नहीं होगा। इंद्रियों के माध्यम से ही जगत का ज्ञान होता है। और नाम रूप का जो मूल है वो इंद्रियों का संवेदन है या इंद्रियों की अनुभूति मात्र है। तो इंद्रियां जो है, जो भी अनुभव इंद्रियों से हो रहे हैं, हम उनको वस्तुओं के वर्ग में डाल लेते हैं, वो वस्तुओं के अनुभव है, हम ऐसा कहते हैं। शरीर है वो भी एक वस्तु है, भले ही इंद्रियां शरीर पर दिखें लेकिन शरीर इंद्रियों के माध्यम से दिखता है। बड़ी विचित्र चीज़ है, जो आईने में दिखता है वो शरीर एक वस्तु मात्र है, एक भौतिक रचना है, उसमें वही गुण है जो बाकी वस्तुओं में है। हाँ, वो चलता है, हिलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, इसलिए आप उसको मैं कहते हैं या शरीर कहते हैं, जीवित कहते हैं। शरीर का जो अनुभव है वो दो तरह का है, एक आईने में दिखता है जो वस्तु है, जो इंद्रियों के माध्यम से दिखता है, और दूसरा जो है वो मन के माध्यम से दिखता है, जो शरीर की अंदरूनी अनुभूतियां हैं जिसकी वजह से आपको भ्रम होता है कि वो मैं हूँ। उसका भार, यदि हाथ पर हिल रहे हैं तो वो अनुभव, यदि भूख लगती है या दर्द होता है शरीर में, या किसी तरह का आनंददायी अनुभव शरीर के माध्यम से यदि आ रहा है तो हम कहते हैं कि वो भी मैं हूँ, वो भी शरीर ही है। लेकिन वो ये सारे अनुभव जो है, आंतरिक अनुभव शरीर के, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं आते। बहुत कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि जो अनुभव अंदर से आ रहे हैं शरीर के, वो वहाँ से आ रहे हैं जो भौतिक शरीर है। ऐसा दोनों में एक संबंध बना देते हैं, और सही बात है, वो शरीर वही है जो आईने में दिखता है, जिसका आपको आंतरिक अनुभव हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो शरीर के दो तरह के अनुभव हो रहे हैं, एक इंद्रियों के माध्यम से, एक बिना इंद्रियों के। आंतरिक अनुभव, अनुभूतियाँ, संवेदनाएँ शरीर की, तो क्या दो शरीर हैं? नहीं, शरीर तो एक ही है लेकिन दो तरह के अनुभव हैं उसके। इसीलिए वो शरीर भी एक अनुभूति है, बस क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से वो अनुभूति हो रही है, हम उसको भौतिक कह देते हैं, हम उसको वस्तु कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे शरीर का अंदरूनी अनुभव, जो दर्द, पीड़ा या किसी तरह का भारीपन या किसी भी तरह की आनंददायी अनुभूतियाँ जो शरीर में हैं, वो किस इंद्रिय के माध्यम से हो रही है, कैसे हो रही है? तो उसके लिए हम अवधारणा बना लेते हैं कि आंतरिक इंद्रियाँ हैं जिनके माध्यम से अनुभव हो रहे हैं। तो आप देखें, बहुत से हो रहे हैं, जैसे शरीर का जो वजन है, आपको भारीपन जो लगता है, यदि आप आँख बंद करके भी उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे तो आपको एक अनुभूति होगी, जबकि आप देख नहीं पाएंगे शरीर को, लेकिन फिर भी होगी। ये मांसपेशियों का अनुभव है जो शरीर के अंदर से आपको मिल रहा है, लेटे हैं या बैठे हैं या उल्टे खड़े हैं, इसका जो ज्ञान है वो आपको जो अंदरूनी इंद्रियां हैं उसकी वजह से मिल रहा है, वो बाहरी इंद्रियों से नहीं मिल रहा है। इस तरह से शरीर में जो पीड़ाएं होती है, जैसे भूख का लगना या संवेदनाएं हैं, उनके लिए हम अवधारणा बना सकते हैं कि आंतरिक इंद्रियां हैं, अंतकरण है, जिसकी वजह से वो अनुभूतियां हो रही है। तो वो इंद्रियां जो है वो भिन्न है बाहरी इंद्रियों से थोड़ी सी, लेकिन अनुभव वही है, एक ही अनुभव है, बस क्योंकि बाहरी इंद्रियों से जो हो रहा है हम उनको वस्तु का नाम दे देते हैं, उन अनुभवों को जो अंदरूनी इंद्रियों से हो रहा है हम उनको शरीर का नाम दे देते हैं कि मैं हूँ ये, और ज़्यादा उनमें अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। और मन का अनुभव, वो भी अंदरूनी इंद्रियों से हो रहा है, उसको भी हम अंतकरण का भाग मान सकते हैं। तो यदि आपको गुस्सा आता है तो आप देखेंगे कि उसमें वस्तुओं के अनुभव तो है ही, और इंद्रियों के अनुभव तो है ही, और अंदरूनी अनुभव भी हैं, शरीर का गर्म होना, ठंडे गर्म का, या शरीर में जो गति होती है गुस्से में, और जो विचार आते हैं मन में, जो विचार चल रहे हैं, जो भावनाओं की अनुभूति होती है वो भी होती है। उसके लिए भी हम एक अवधारणा बना सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर भी कुछ अंदरूनी इंद्रियाँ हैं जिसकी वजह से मुझे ज्ञान होता है कि मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसका सीधा अनुभव होता है, उसमें कोई भी इंद्रियाँ नहीं होती। आप कह सकते हैं कि जो पीड़ा की या भूख की या शरीर की गति की जो संवेदनाएँ हैं, वो भी उन जिन इंद्रियों से आती है, आंतरिक इंद्रियों से, वो भी नहीं होती है। यदि आप भावनाओं को या विचारों को या अपनी कल्पनाओं को देखें, तो तीसरे तरह की इंद्रियां आप इंद्रियों की अवधारणा बना सकते हैं कि यह तीसरी तरह की इंद्रियां हैं जो कि शुद्ध मानसिक अनुभवों की अनुभूति करवाती हैं, जिसकी वजह से उनके दर्शन होते हैं, ऐसी एक अवधारणा बना सकते हैं। इनको ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, कोई इंद्रियां नहीं मिलेंगी मन में, लेकिन अवधारणा के रूप में समझने में काफ़ी आसान हो जाता है। योग में कई तरह के शरीर बताए गए हैं, जिसमें कि कई तरह की इंद्रियां बताई गई हैं, तो ये सारी परिकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, ये समझाने के लिए कि देखो ये अनुभव उस अनुभव से भिन्न है, ऐसा अनुभव इस इंद्रिय के माध्यम से होता है। अंत में आप देखेंगे तो सभी अनुभव जो है किसी न किसी इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, और सभी अनुभव अनुभूति मात्र हैं। ध्यान से देखें, अभी भी देख सकते हैं आप, ये प्रयोग अभी भी कर सकते हैं, ये आपके सामने है, कि वस्तुओं के अनुभव जो शरीर पर स्थित इंद्रियां हैं उनके माध्यम से हो रहे हैं, शरीर स्वयं वस्तु है और इंद्रियों की अनुभूति वस्तुओं को जन्म देती है। इंद्रियां नहीं तो वस्तुएं नहीं, शरीर भी नहीं। इसी तरह शरीर के आंतरिक अनुभव किसी आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से है, उससे शरीर का ज्ञान होता है, शरीर की जो अवधारणा बनती है उन संवेदनाओं के माध्यम से, उन अनुभूतियों के माध्यम से। इसीलिए मैं उसको मैं कहता हूँ, इसीलिए अहम वहाँ स्थित है, क्योंकि ये अनुभूतियाँ सिर्फ मुझे होती है और किसी को नहीं। वस्तुओं की अनुभूतियाँ सबको होती हैं और मन की अनुभूतियाँ भी आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से है, जिसको कि अंतकरण भी आप कह सकते हैं, अंतकारण भी कह सकते हैं। उनका कारण कहीं मन के अंदर स्वयं है, मानसिक इंद्रियां हैं जिनकी वजह से सारी भावनाएं, आपकी स्मृतियां, आपकी कल्पनाएं, आपके विचार, ये सारा जो है मानसिक वातावरण का अनुभव आपको होता है। तो इसका अनुभव का मूल ये निकलता है कि अनुभव अनुभूति मात्र है, अनुभव इंद्रियों से जनित संवेदनाएं हैं, सिर्फ इतना है अनुभव। बहुत विचित्र बात है क्योंकि लोग सोचते हैं कि अनुभव वहाँ है बाहर कहीं और मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। ऐसी अवधारणा लोगों की है, ऐसी मान्यता है। यदि आप ध्यान से देखें, उस पर प्रयोग करें, अपना अप्रोक्ष अनुभव उपयोग में लाएं, प्रमाण खोजने की कोशिश करें, तो आपको ये मिलेगा कि सारे के सारे अनुभव अनुभूति मात्र है, संवेदना है एक तरह की, विभिन्न तरह की संवेदना है। इसलिए आपका मन कहेगा कि विभिन्न तरह के की वस्तुएं हैं, जागतिक वस्तुएं हैं, वस्तुनिष्ठ जगत की वो एक तरह का अनुभव है, शरीर दूसरे तरह का है, शरीर का जो अंदरूनी अनुभव है वो तीसरे तरह का है, और मानसिक अनुभव मानसिक वस्तुएं हैं वो चौथे तरह की हैं। ऐसा भी आप विभाजन कर सकते हैं, लेकिन अंत में ये पता चलता है कि सभी के सभी अनुभूतियाँ हैं जो किसी माध्यम से आ रही हैं। किस माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां वो भाग है चित्त का। आप कहेंगे नहीं, अनुभव तो वो है जो इंद्रियों के अंत में जो मिलता है वो अनुभव है, उसके पहले क्या है इंद्रियों के पहले? तो बड़ी विचित्र बात है, ये जाना नहीं जा सकता, ये अज्ञेय है। जो इंद्रियों के पहले है, बीच में इंद्रियां हैं और इंद्रियों के पीछे अनुभव करता है, आपको ऐसा एहसास होगा, आपको ऐसा लगेगा, आपको ये अनुभूति भी हो रही होगी कि इंद्रियां बीच में हैं और इंद्रियों के परे जगत है, वस्तुएं हैं, चाहे वो शरीर हो चाहे मन हो, या फिर और इंद्रियों के पीछे मैं हूँ, इंद्रियों के पीछे अनुभव करता हूँ है। इसीलिए कभी कभी आपको ये अनुभूति होती है कि मैं सिर में कहीं स्थित हूँ, क्योंकि सारी इंद्रियाँ जो है मुख्य इंद्रियां सिर में स्थित हैं। ध्यान से देखें, आंखें सिर में हैं, कान सिर में है, नाक सिर में है और जीभ भी सिर में ही है, सब एक जगह स्थित है, इसका कारण है। और इंद्रियों का एक केंद्र है जिसको हम इंद्र कह सकते हैं या मस्तिष्क कह सकते हैं, जो कि इस तंत्र का भाग है। इसीलिए लोगों की अवधारणा बन गई है कि जो सारी अनुभूतियाँ हैं वो मस्तिष्क में होती है, ये अवधारणा बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मस्तिष्क में जो अनुभूतियां हैं वो हमें कभी नहीं होती वो सिर्फ एक अवधारणा मात्र है, वो भाग है इंद्रियों का, वो इंद्रियों को एक जगह जमा करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, जो भी इंद्रियां बता रही है वो सारे अनुभव एक जगह इकट्ठा करता है, उनको जोड़ता है आपस में, बस इतना उसका काम है। इसीलिए हमें कभी कभी लगता है कि मैं जो है अनुभव करता जो है वो सिर में कहीं स्थित है, क्योंकि इंद्रियां वहां स्थित है। स्वप्न अवस्था में जाएंगे तो ये स्थिति भी बदल जाती है, अनुभवकर्ता की स्थिति मन की स्थिति के हिसाब से होती है, मन की स्थिति बदल जाती है। स्वप्न अवस्था है तो आप सिर में नहीं दिखाई देंगे, फिर अनुभवकर्ता सिर में नहीं होगा, फिर वो उन इंद्रियों के पीछे होगा जो कि स्वप्न लोक में है। स्वप्न लोक को एक लोक कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है या अपना जो रोज का जागृत अवस्था का लोक है, वो भी इंद्रियों के माध्यम से की अनुभूति हो रही है, उसका अनुभव हो रहा है। स्वप्न लोक का भी किन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है और अनुभव करता उन इंद्रियों के पीछे दिखेगा आपको स्वप्न में। आप ध्यान से देखें, कोई यदि आपको रुचि है स्वप्न का अध्ययन करने की, इसके लिए एक विशेष तरह का योग बना दिया गया है जिसको कि स्वप्न योग कहते हैं। प्रसिद्ध नहीं है इतना, बहुत कम लोग उसकी साधना करते हैं। इसकी साधना मात्र इतनी है कि आपकी जो मानसिक स्थिति जागृत अवस्था में है उसी को बनाए रखना स्वप्न अवस्था में, और उतनी ही चेतना रखना स्वप्न अवस्था में, और आपको वहाँ पर भी एक शरीर मिलेगा, वहाँ पर भी इंद्रियाँ मिलेंगी, वहाँ पर भी एक जगत मिलेगा। ज़्यादा भिन्नता नहीं है इस जगत में और उस जगत में, आप देखेंगे मूल रूप से एक ही है। योगियों ने कई जगत ढूंढ के निकाले हैं, कई लोक ढूंढ के निकाले हैं, उसमें अलग तरह के शरीर होंगे, अलग इंद्रियां होंगी, अलग वस्तुएं होंगी, अलग जीव होंगे। यदि आपकी रुचि है इसमें स्वप्न योग में तो उसकी साधना करें। ये आपके यदि आपके कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो वो इस अप्रोक्ष अनुभव से, लोकों के अनुभव अप्रोक्ष अनुभव से वो सारी मिट जाएंगे, उनका समाधान हो जाएगा। भेद देखा होगा अनुभवकर्ता और अनुभव में कि अनुभवकर्ता जो है आपको कहीं जाना नहीं पड़ता उसका अध्ययन करने के लिए, वो यहीं है, अभी है, या हर जगह है, लेकिन अनुभव के अध्ययन आप करने जाएंगे तो उसमें प्रयास लगता है, उसमें साधना लगती है। जो अभी अनुभव आपके सामने है उसके लिए आपको प्रयास नहीं लगेगा, लेकिन जो अनुभव आपके अभी सामने नहीं है, जिसका अनुभव अभी नहीं हो रहा है चित्त में, उसके लिए प्रयास लगेगा। अनुभवों का सार, अनुभवों का मूल तत्व अनुभूति है। ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि किसी को इसमें शंका है, यदि प्रश्न है कि नहीं अनुभव तो वहाँ बाहर में जो वस्तुएं हैं उनका है, या शरीर में जो गति हो रही है उनका अनुभव है, मन में जो गति हो रही है वो है, यदि उसका अनुभव नहीं होगा तो भी वो वस्तुएँ रहेंगी और ये सब रहेगा, तो ध्यान से देखें कि ऐसा नहीं है। अनुभूति जब तक नहीं होती, कोई वस्तु नहीं होती, कोई शरीर नहीं होता, और कोई मन नहीं होता, कोई मानसिक अनुभव नहीं होता, ये तीनों भेद जो है अनुभवों के, जगत शरीर और मन, ये कल्पना मात्र है, ये परिकल्पना है, ये अवधारणा है। समझने के लिए आसान हो जाता है अब बांट दें अनुभव को तीन में, लेकिन मूल रूप से ये तीनों एक ही अनुभव है। अनुभूतियों का अनुभव, अनुभूतियाँ किसकी हो रही हैं, ये अज्ञेय है, ये जाना नहीं जा सकता। इसलिए मैंने कहा कि लगता है ऐसा कि हमें काफ़ी कुछ जानकारी हो रही है, काफ़ी कुछ ज्ञान हो रहा है इस वक्त, लेकिन अनुभवों के पीछे क्या है वो नहीं जाना जा सकता। कुछ ना कुछ उसमें बीच में कोई ना कोई इंद्रिय या शरीर आएगा, और उसको जो भी है वहाँ पर उसको अनुभूति में बदल देगा, और इस तरह उसी का आपको अनुभव होगा, चाहे वो किसी भी तरह की इंद्रियाँ हो, चाहे शरीर की इंद्रियाँ हो जो कि भौतिक जगत का अनुभव करवाती हैं, या फिर मन की इंद्रियाँ हो, किसी भी, इनको योग में तरह तरह के शरीर कहा गया है, क्योंकि शरीर क्या है, इंद्रियों का घर मात्र है, इंद्रियाँ शरीर में रहती हैं, और क्या है शरीर, कुछ भी नहीं। शरीर का प्रयोजन यही है कि वो इंद्रियों का आधार बने, शरीर के बिना इंद्रियां काम नहीं करती। सारा जगत का अनुभव जो है इंद्रियों के माध्यम से है, और शरीर है तो इंद्रियां हैं, शरीर नहीं है तो नहीं है, और मृत्यु जो है इंद्रियों का बंद हो जाना ही है, इंद्रियों का नष्ट हो जाना, इंद्रियों का नाश मृत्यु है। शरीर का नाश इंद्रियों के नाश का कारण है, इसीलिए हम मृत्यु को शरीर का नाश इस तरह से परिभाषित करते हैं, वास्तव में वो इंद्रियों का नाश है। यदि आप ध्यान से देखें तो, योगी की दृष्टि से देखें तो, मृत्यु जो है शारीरिक इंद्रियों का नाश है। उसके बाद क्या है वो किसी को नहीं पता, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने आपको योग निद्रा के बारे में बताया, आपको तरह तरह की अवधारणाएं मैं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ मैं, लेकिन वो अनुभव ज्ञान तभी होगा जब शरीर का नाश होगा, जब इंद्रियों का नाश होगा, जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो भौतिक जगत से जुड़ी हैं इंद्रियां, जो वस्तुओं की अनुभूति करवाती है नाम रूप के अनुभव के रूप में, जब तक उनका नाश नहीं होगा तब तक मृत्यु का अनुभव नहीं होगा। तो जल्दी किसी को नहीं है यहाँ पर, मैं समझ सकता हूँ, तो इसका ज़रा धैर्य रखना चाहिए और तरह तरह की अवधारणा नहीं बनानी चाहिए मन में। जब तक जब अनुभव होगा तब होगा, यदि आपकी चेतना होगी उस वक्त मृत्यु के वक्त तो आपको याद भी रहेगा क्या अनुभव हुआ है वो स्मृति में भी जाएगा, उसका संस्कार भी बनेगा। इसी तरह जन्म के बारे में कह सकते हैं कि जन्म इंद्रियों का उद्भव है। जब शरीर में इंद्रियां काम करने लगती है तो उसको हम जन्म का नाम देते हैं उस घटना को। ये काफ़ी विचित्र बात है लोगों के लिए, क्योंकि लोग ऐसा सोचते नहीं है। लोगों की सोच काफ़ी भ्रष्ट तरीके की सोच है, उनको जो बता दिया गया है वो वैसा मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव की गहराई में जाके देखा नहीं है, अनुभव कितने तरह के हैं देखा नहीं है, अनुभव का संश्लेषण नहीं किया है। विश्लेषण यानी कि बांटना, यानी हमने देखा 3, 4, 5 जितने भी तरह के अनुभव हैं, संश्लेषण जब हम करेंगे यानी कि जोड़ना, देखेंगे एक ही तरह का अनुभव है जो कि अनुभूति मात्र है। अनुभव का मूल, अनुभव का सार अनुभूति है जो मानसिक है, चित्त के माध्यम से हो रही है, ये कहना ज़्यादा सही होगा। किसको हो रही है वो प्रश्न है, बहुत आसान है, अनुभवकर्ता को हो रही है अनुभूतियाँ, उसी को अनुभव का नाम देते हैं हम। और चित्त का काम है कि उसको विभाजित करना है कि ये इस तरह की अनुभूति है, देखो इस, क्योंकि इसमें ये रूप रंग है इसका, ये वो उस तरह की अनुभूति है और ये जो है अलग अनुभूति है। ऐसे वो हजारों तरीके के जो है अनुभव आपके सामने ला के खड़ा कर देगा चित्त। ये चित्त वृत्ति है, एक का हजार बनाना, एक का 10,000 बनाना, और आपका जीवन यही है सारा, तरह तरह के अनुभव अनुभूतियों को अनुभव करना, यही जीवन है। जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है, एक के बाद एक अनुभव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और एक ही तत्व है। ऐसा लगता है कि बहुत से अनुभव हैं, लेकिन वो भ्रम है, वो माया है, मिथ्या है।